मुझे आज भी वो दृश्य याद है जब मुझे देखने के लिए मेला जैसा लग गया था।
उस दिन सबने माताजी की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था, उस भगवती की लीला को जाना था। उस दिन के बाद से आज तक 25 वर्ष 1986-2011 हो गए, मैं पुनर्तः स्वस्थ हूँ। श्रीमती यशोदा शर्मा। श्री गौरीशंकर शर्मा जी 1970 में भीलवाड़ा में पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए। यशोदा बहिन ने 1975 में शांतिकुंज में कन्या सत्र किया। कालांतर में श्री गौरीशंकर शर्मा जी एवं श्रीमती यशोदा शर्मा 1982 में पूज्य गुरुदेव के बुलाने पर स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गए। वर्तमान में श्री गौरीशंकर शर्मा जी शांतिकुंज में व्यवस्थापक के रूप में कार्यरत हैं। लाली,
खाना क्यों नहीं खाया?
मैं जब कन्या सत्र में शांतिकुंज आई थी तो हमारा ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप था। उस सत्र में 250 लड़कियां थीं, कुछ विवाहित भी थीं, पर सबके लिए एक सा नियम था।
हम लोगों का बैच सर्वाधिक शरारती भी गिना गया।
हमारा सत्र शुरू हुए 5-6 दिन ही हुए थे। हम लोग देखते थे कि कभी कभी कुछ सीनियर लड़कियां घंटी लगने से पहले ही खाना खा लेती हैं। उस दिन हमें भी थोड़ा जल्दी भूख लगाई।
हमारे साथ की बहनें भी बोली कि आज अभी से भूख लग रही है। हमने सोचा चलो आज हम भी जल्दी भोजन कर लेते हैं। हम चार लोग ऊपर भोजनालय में गए और थाली और पानी का गिलास लेकर बैठ गए।
भारती अम्मा और सोमा अम्मा रोटी सेक रही थी।
हमें यूं बैठे देखकर वे आपस में इशारा कर मुस्कुराई पर बोली कुछ नहीं। हमें लगा कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई है, पर फिर सोचा कि अब तो बैठ ही गए हैं, अब क्या करें, बैठे रहते हैं। वे दोनों कुछ देर तक आपस में इशारा कर मुस्कुराती रहीं, फिर अचानक भारती अम्मा उठीं और हमारे सामने से थाली उठाकर ले गईं, बोली कुछ नहीं। हमें बहुत अपमान महसूस हुआ।
हम चुपचाप नीचे उतर आए।
भोजन की घंटी बजी, सबने भोजन कर लिया, पर हम चारों भोजन करने नहीं गए। भूख तो बहुत लग रही थी, पर मन में आता कि इतने अपमान के बाद अब कैसे जाएं। उन दिनों जब सब भोजन करते थे तो माताजी सामने बैठती थीं। इतने लोगों में भी उन्हें पता चल गया कि हम चारों भोजन करने नहीं आए हैं। उन्होंने हमें बुलवाया।
हिम्मत बटोरकर हम लोग गए।
माताजी अपने कमरे में थीं।
हम वहीं चले गए। माताजी ने पूछा, लाली
खाना क्यों नहीं खाया? माताजी के इतना पूछते ही हमारी रुलाई फूट गई।
हम फफक फफक कर रोने लगे और फिर सब बात बताई।
कहा, माताजी वो हमें हमारी गलती बताती, हमें समझा देती, हमें बुरा नहीं लगता, पर इस व्यवहार से अब हम खाना खाने कैसे जाएं? माताजी ने भारती अम्मा और सोमा अम्मा को बुलाया और उक्त व्यवहार के लिए डांट लगाए। फिर आगे से किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए मना किया।
फिर बोली, अब इन छोरियों के लिए गरम गरम खाना बनाओ। माताजी ने दोबारा खाना बनवाया और अपने सामने बिठाकर खूब लाड प्यार लुटाते हुए खाना खिलाया। वह क्षण ऐसे थे कि अपनी सगी माँ भी शायद इतना प्यार न लुटाती होगी। उस दिन माँ जगदम्बा का प्यार पाकर हम धन्य हो गए।
ऐसे न जाने कितने ही क्षण अनेकों परिजन अपने हृदय में समेटे हुए हैं। आज भी जब हम उन पलों को याद करते हैं तो वो पल सजीव हो उठते हैं। समझाने की कला।
गुरुजी का समझाने का तरीका बड़े गजब का था।
कन्या शिविर में अक्सर गुरुदेव पारिवारिकता के संबंध में प्रवचन करते और छोटी छोटी बातें भी इस ढंग से बताते कि समझ में आ जाता कि उनका कितना महत्व है और वे मन में गहराई तक उतरती चली जाती।
गुरुदेव कहते, बच्चियों, तुम जहां भी रहो परिवार में स्नेह आत्मीयता का संचार करती रहो, सबको मिलाने का काम करो, बिखेरने का नहीं।
अगर तुम्हारे पास कोई बहू अपनी सास की निंदा करती है तो कहना, अरे
तुम्हारी सास तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी।
अगर तुम्हारे पास कोई सास अपनी बहू की निंदा करती है तो कहना, अरे आपकी बहू तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। इस तरह परिवार में कलह की जगह प्रेम का संचार होता है। तुम यहाँ से जाकर यही करना।
रूठे को मनाना, टूटे को बनाना। बड़ी से बड़ी बात को भी वे बड़े ही मधुर ढंग से समझाते, बिल्कुल एक सच्चे अभिभावक की तरह।
यह कन्या सत्र की बात है। हमारा बैच सबसे बड़ा और शरारती बैच था।
एक दिन कुछ लड़कियां भारती अम्मा जी से किसी कारण नाराज हो गईं। और भी कुछ छोटे मोटे कारणों से अधिकतर लड़कियां उनसे नाराज रहती थीं। सो उन लड़कियों ने मिलकर योजना बनाई कि आज हम हड़ताल करेंगे।
जब भोजन की घंटी लगी तो न तो वे खुद भोजन करने गईं और न ही किसी और को जाने दिया। 2-3 बार घंटी बजी पर कोई नहीं गया।
तब माताजी को बताया गया। माताजी ने 2-3 लड़कियों को बुलवाया और सब बात मालूम की। गुरुजी तक बात पहुंची। गुरुजी ने सबकी गोष्ठी बुलाई और बड़े प्यार से बोले, अच्छा
तुम सब लोग नाराज हो,
सब आज भूखे हो।
बेटा, भोजन से कैसी नाराजगी? इस तरह तो तुम लोग स्वयं को ही सजा दे रहे हो।
जिससे नाराज हो उसका तो मजा हो गया। उसका काम बच गया।
इतना सब खाना फिकेगा तो नहीं?
अभी नहीं खाया तो शाम को खाना पड़ेगा। बेटा, नाराजगी प्रकट करने का यह तरीका सही नहीं है।
सही तरीका तो यह है कि तुम लोग दुगना खाना खा जाओ,
जिससे कि वह परेशान हो, उसे दोबारा भोजन बनाना पड़े। स्वयं को सजा देने में क्या समझदारी है। उनकी प्यार दुलार भरी डांट सुनकर सबकी नाराजगी दूर हो गई। सबको भूख भी लगी ही थी। सबने फटाफट थाली उठाई और भोजन करने बैठ गए। गुरुजी माताजी को बहुत साज श्रृंगार पसंद नहीं था, बस माताजी मेहंदी सदा लगाकर रखती थी।
उनके पैरों में मेहंदी सदा लगी रहती थी।
शांतिकुंज में वशिष्ठ विश्वामित्र भवन के सामने व प्रवचन हॉल के दोनों ओर उन्होंने मेहंदी के बगीचे लगवा रखे थे।
हम सबसे तो वे मेहंदी लगाने के लिए कहती ही थीं, साथ ही शिविर में भी जो बहनें आती उनसे भी कहती, ये तुम्हारा मायका है, मेहंदी जरूर लगा कर जाना। सावन के महीने में वे झूला डलवाती थीं। हम लोग खूब झूला झूलते और मेहंदी लगाते। उनके साथ बिताए क्षण तो वास्तव में अविस्मरणीय हैं। जितना काम करते उतनी ही मस्ती भी करते थे।
गुरुजी माताजी मनोरंजन को भी बहुत महत्व देते थे। उनका कहना था कि मनोरंजन स्वस्थ ढंग का होना चाहिए, जिसमें आनंद तो आए ही साथ में कुछ सीखने को भी मिलता रहे।
वे चाहते थे कि हमारे बच्चे बच्चियां अपने परिवार से दूर यहाँ आए हैं तो उन्हें अपने परिवार की याद न सताए और वे सब कुछ सीख सकें,
उनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा हो।
इसके लिए वे कभी कभी मनोरंजन का कार्यक्रम भी रखते थे,
जिसमें प्रेरणाप्रद दृष्टांत आधारित एकांकी, लघु नाटिका, प्रहसन, गीत संगीत, प्रवचन आदि प्रस्तुत करवाए जाते। गुरुजी बैंड, परेड, लाठी चलाना आदि का प्रशिक्षण ही नहीं दिलवाते थे, बल्कि उसका प्रदर्शन भी करवाते और माताजी के साथ स्वयं भी उसमें शामिल होते।
1976-77 में गुरुजी ने टी वी
मंगवाया और हम सबने माताजी के साथ बैठकर सबसे पहली फिल्म जो देखी वह थी आनंद और दूसरी अनुराग। मनोरंजन के साथ साथ सबको उसकी प्रेरणाएं भी समझाईं। गुरुजी को आनंद फिल्म बहुत पसंद आई थी।
वह अक्सर उसके बारे में चर्चा किया करते थे। राजेश खन्ना का नाम उन्हें याद हो गया था।
किसी को ज्यादा बना ठना देखते तो कहते, तू राजेश खन्ना है क्या? बेटा, लोकसेवी को सादगी से रहना चाहिए। उस जमाने में जादूगर कठपुतली वाले अपना खेल दिखाने बायस्कोप वाले बायस्कोप लेकर गली मोहल्ले में आते थे।
कभी कोई शांतिकुंज की तरफ आ जाता तो वह भी दिखवाते और बाद में समझाते भी कि यह सब हाथ की सफाई है।
सन 1985-86 के आसपास महात्मा गांधी जी पर फिल्म बनी।
जब हरिद्वार की टाकीज में वह आई तो गुरुजी ने माताजी से कहकर सबको 2-2 रुपये दिए और कहा, जाओ सब लोग गांधी पिक्चर देख कर आओ।
उससे संकल्प निष्ठा की, देश सेवा की प्रेरणा लेकर आओ। जिसने भी देखी एक प्रेरणा मिली कि देश के हित के लिए हमें किस प्रकार निज सुख वैभव का त्याग करना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। स्वावलंबन का महत्व। माताजी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खिलौने बनाना, जैम, जेली, अचार, मुरब्बे आदि विभिन्न प्रकार के स्वावलंबन का प्रशिक्षण भी दिलाती थी। यदि कोई किसी विशेष विद्या का जानकार आ जाता और उसे सिखा सकना संभव होता तो गुरुजी माताजी कहते, हमारी छोरियों को भी सब सिखा कर जाना, साथ ही हम लोगों को भी उसका महत्व बताकर सीखने के लिए प्रेरित करते।
वे कहती थीं कि महिलाओं को जरूरत के सब काम सीखना चाहिए।
कृष्णा उपाध्याय भाभी जी बताती हैं कि जब वे शांतिकुंज आए तब थोड़े से ही परिवार शांतिकुंज में रहते थे। मुश्किल से 10-12 परिवार थे। माताजी हम सबको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि सीखने के लिए कहती। शुरू के दिनों में सिलाई मशीन नहीं थी तो उन्होंने सुई धागे से भी सिलना सिखाया। फिर सिलाई मशीनें भी मंगाई गईं। कौशल्या जीजी सबको सिलाई सिखाती थी। माताजी सबका ध्यान रखती थी, कौन कितना सीख रहा है।
मैंने सिलना तो सीख लिया था, पर कटिंग करने में मुझे डर लगता था।
एक दिन माताजी ने कौशल्या जीजी से कहा कि अब तुम उपाध्याय की बहू को कटिंग करके नहीं दोगी, वह खुद कटिंग करेगी फिर सिलकर मुझे दिखाएगी।
माताजी ने बच्चों के कपड़े नेकर कमीज आदि हम लोगों से सिलवाए।
मैंने डरते डरते कटिंग की और सिलाई करके माताजी को दिखाया। जब हम लोग उन्हें दिखाने गए तो बोली, देखो अब तुम्हारे इतने पैसे बच गए ना।
नहीं तो अभी इतने पैसे दर्जी को देने पड़ते। अब इस बचत से तुम लोग दूसरी आवश्यक चीजें खरीद सकते हो। इस प्रकार माताजी ने स्वावलंबन के साथ साथ मेहनत करना, बचत करना और कम पैसे में भी कुशलतापूर्वक अपनी गृहस्थी चलाने के गुर हम लोगों को सिखाए। तेरा प्रमोशन हुआ।
सन 1974 में मेरे पति श्री गौरीशंकर शर्मा जी जब प्राण प्रत्यावर्तन शिविर पूरा होने पर गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी ने पूछा, तेरा प्रमोशन हुआ या नहीं? इन्होंने कहा, नहीं हुआ गुरुजी। तब गुरुदेव ने कहा, जा, तेरा प्रमोशन हम करवा देंगे। जब वे जोधपुर वापस आए तो पहली जनवरी के दिन ऑफिस में बैठे सोच रहे थे, अगर मेरा प्रमोशन हो जाता तो इतना वेतन हो जाता कि मैं आराम से VRS ले लेता।
इतनी देर में इनके एक दोस्त ने आकर कहा, शर्मा भाई बधाई हो, तेरा प्रमोशन हो गया। इन्हें लगा मजाक कर रहे हैं, भला यह कैसे संभव है।
लेकिन जब लेटर देखा तो विश्वास हुआ और गुरुजी की बात याद आई, जा मैं तेरा प्रमोशन करा दूंगा, उनको ठीक तो मैं करूंगा। सन 1982 में हम पूर्ण रूप से शांतिकुंज आ गए।
बहुत से संस्मरण हैं, उनके अलौकिक स्वरूप की एक झलक जो हमारे पूरे परिवार के लिए चमत्कार स्वरूप है वह बताती हूँ। यह घटना 19 जनवरी सन 1989 की है।
मेरे देवर श्री हरिशंकर शर्मा, जो दिल्ली में सर्विस करते हैं, परिवार सहित घूमने गए थे।
उन्हें भीलवाड़ा से फोन आया कि पिताजी कोमा में हैं, शीघ्र आ जावें।
उन्होंने आगे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया व सीधे भीलवाड़ा पहुंच गए। देखा, पिताजी कोमा में थे,
किसी बात की सुध नहीं।
सो परिवार को वहीं घर पर छोड़कर वे सीधे हरिद्वार आ गए।
यहां आकर घर में इतना ही बताया कि मैं आप लोगों को लेने आया हूं, पिताजी कोमा में हैं और मैं गुरुजी से मिलने जा रहा हूं। वे सीधे ऊपर गुरुजी के पास चले गए व गुरुजी से बताया कि गुरुदेव पिताजी कोमा में हैं, अतः मैं भैया भाभी को लेने आया हूं।
गुरुजी ने कहा, अच्छा पिताजी कोमा में हैं। कुछ रुके, फिर बोले, क्या नाम है। देवर जी ने बताया, श्री सीताराम शर्मा। क्या उम्र है। 80 वर्ष। कहाँ रहते हैं। भीलवाड़ा। उस समय गुरुदेव कमरे में ही अपने दोनों हाथ पीछे की ओर बांधे टहल रहे थे। उन्होंने कागज पेन उठाया और अपने प्रश्नों के उत्तर नोट किए। कुछ देर सोचते रहे, फिर कहा, अच्छा
तू लेने आया है तो ले जा, देख कर आ जाएगा,
उनको ठीक तो मैं करूंगा। श्री हरिशंकर जी को कुछ समझ में नहीं आया।
सोचने लगे, देख कर आ जाएगा, कैसे कह रहे हैं, पिताजी तो कोमा में हैं, हो सकता है कुछ दिन रुकना पड़े।
मन ही मन सब तर्क वितर्क चलता रहा।
उन्होंने गुरुजी से कुछ कहा नहीं। इतने में गौरीशंकर जी ऊपर पहुंच गए। गुरुदेव ने उनके कुछ कहने से पूर्व ही कहा, यह तुझे लेने आया है, ऐसा कर तू घर चला जा,
पिताजी को देखकर आ जाना। उन्होंने आदेश शिरोधार्य किया और दोनों भाई आ गए तथा हम सब ने भीलवाड़ा हेतु प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर देखा, पिताजी एकदम स्वस्थ थे। डॉक्टरों सहित सभी आश्चर्यचकित थे।
यह कैसे हुआ। घर में सबसे बातचीत की तो पता चला, जिस क्षण गुरुवर ने पता ठिकाना नोट किया था उसी क्षण से उनमें चेतना आने लगी थी और हमारे पहुंचने तक तो वे अच्छे भी हो गए थे।
वृद्धावस्था रुग्णता के कारण थोड़ी कमजोरी तो थी, पर उन्हें देखकर कोई कोमा की स्थिति का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। हम सभी को गुरुजी के उस कथन, उनको ठीक तो मैं करूंगा और देखकर आ जाएगा, का रहस्य समझ में आ गया था। ठीक होने के एक माह बाद पिताजी शांतिकुंज आए।
दूसरे दिन माताजी से मिलने गए तो माताजी ने पिताजी से हाल चाल पूछा।
फिर बोली, बहू खाना खिलाती है कि नहीं,
क्योंकि भोजन में परहेज चल रहा था।
लंबे समय से वे केवल उबला भोजन ही ले रहे थे। सो बोले, आप खाना कहाँ माताजी, उबले भोजन में कुछ स्वाद तो होता नहीं। माताजी ने कहा, आप तो राजस्थान के हो, आपको तो दाल बाटी बहुत अच्छा लगता होगा। तो वे बोले, कहाँ, दाल बाटी चूरमा। और पिताजी ने उन्हें दाल बाटी पर एक कविता सुनाई। कविता सुनने के बाद माताजी ने कहा, बेटा कल मैं तुम्हें दाल बाटी सब खिलाऊंगी,
उसके बाद डॉक्टर
जो कहे सो करना। अगले दिन माताजी ने टिफिन भरकर दाल बाटी भेजा व पिताजी ने छककर खाया।
हमें डर भी लग रहा था कि 1.5 महीने बाद पिताजी भारी भोजन कर रहे हैं, पर माताजी पर विश्वास भी था, सो कुछ नहीं बोले।
उस दिन से पिताजी ने सब परहेज छोड़ दिया। 3-4 दिन बाद प्रणाम के समय माताजी ने पूछा, छोरी
तेरे ससुर की तबीयत कैसी है। मैंने कहा, माताजी तबीयत तो ठीक है, पर परहेज नहीं करते, सो डर लगता है।
तब माताजी ने कहा, छोरी तू तो उनको जो इच्छा हो सो खिला,
नहीं तो तेरे भी मन में रह जाएगी और उनको भी इसके लिए वापस आना पड़ेगा।
इसके बाद वे साल भर स्वस्थ रहे। अगले वर्ष फिर उसी तारीख को बीमार पड़े और 21 जनवरी 1990 को शरीर छोड़ दिया।
आज भी जब हम उन पलों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी सब इच्छाओं को पूर्ण करने व जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए ही गुरुदेव ने उन्हें एक वर्ष का जीवन दान दिया था।
श्री महेंद्र शर्मा जी एवं श्रीमती मुक्ति शर्मा। श्री महेंद्र शर्मा जी 1969 में भिलाई में पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए।
उसके बाद लगातार संपर्क में रहे, क्षेत्र में ही समयदान करते रहे, टोलियों में जाते रहे।
1977 में पूज्य गुरुदेव के बुलाने पर सपरिवार स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गए। तू नहीं मांगता तो मुझे दे।
1969 में हम गुरुदेव से जुड़े। मैं उन दिनों भिलाई में काम करता था।
भिलाई में गुरुजी का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में मैंने दीक्षा ली। अगले दिन मैं पंडाल में सबसे पीछे बैठा था। गुरुजी ने एक कार्यकर्ता से मेरी ओर इशारा करके कहा, उस लड़के को बुलाओ। वे मुझे गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने मुझसे पूछा, तुम सिगरेट पीते हो? मैंने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मुझसे झूठ बोलते हो, आज के बाद सिगरेट मत पीना। मैं कभी कभी सिगरेट पीता था।
मुझे हैरानी हुई, गुरुजी को कैसे पता चला? उस दिन के बाद मैंने कभी सिगरेट नहीं पी।
उसके बाद मैं मथुरा आने जाने लगा। दादा गुरुजी के निर्देश पर सन 1971 में पूज्य गुरुदेव ने मथुरा छोड़ दिया। पूज्य गुरुदेव मथुरा विदाई सम्मेलन के बाद हिमालय चले गए।
कहाँ गए, कब लौटेंगे, किसी को भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समीपवर्ती लोगों के पूछने पर उन्होंने कहा कि वे तो अपनी मार्गदर्शक सत्ता के हाथों की कठपुतली भर हैं। हमें बड़ा डैक हुआ, अब आगे साधना के बारे में किससे पूछेंगे?
कौन मार्गदर्शन देगा? 2 वर्ष का समय निकल गया।
कैसे गया पता भी नहीं लगा। अचानक सुनने में आया, गुरुदेव हिमालय से लौट आए हैं और विशेष साधनाएं सिखाने हेतु कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को बुला रहे हैं।
हमने भी हिम्मत करके प्राण प्रत्यावर्तन साधना के लिए आवेदन भेजा। आश्चर्य तब हुआ जब भिलाई के सभी कार्यकर्ताओं को छोड़कर स्वीकृति हमारे ही नाम आई। सभी ने इसे गुरु कृपा कहा। सत्र प्रारंभ हुआ। अंतिम दिन पूज्य गुरुदेव ने सबको एक एक करके कमरे में बुलाया और बात की। वंदनीया माताजी भी साथ ही थी।
उन्होंने माताजी की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस लड़के को पहचान गई,
ये वो ही है। वंदनीया माताजी के अच्छा अच्छा कहते ही हमारे अंदर कंपन सा हो गया। गुरुदेव ने पास बैठाकर कहा कि जीवन का लक्ष्य क्या है पता है? हमने कहा, हिमालय जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अभी समय अनुकूल नहीं है, आगे हम अवश्य ले जाएंगे। और बोले, आज जो भी इच्छा हो हमसे मांग लो। हमने कहा, यदि इस वरदान को आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख सके तो अच्छा हो। वे अपने स्थान से उठे और बोले, तू नहीं मांगता तो मुझे दे।
मैं मांगता हूँ। भारी चिंता में पड़ते हुए हमने इतना ही पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, संपूर्ण समर्पण करना है।
तुम्हारा श्रम हमारे लिए, चिंतन हमारे लिए, समय भी अब हमारा ही होगा। तुम अपने विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। बिना हमारे बताए ही उन्होंने हमारा गांव, घर, संबंधी सभी बता दिए। फिर कहा, पिछली बार तुम बीच में भाग गए थे, इस बार ऐसा न हो। और तत्काल उन्होंने अपने लेटरपैड से कागज निकालकर हमसे पूर्ण समर्पण का संकल्प लिखवा लिया।
उस दिन के बाद से आज तक कठिन से कठिन समय में भी वंदनीया माताजी और गुरुदेव सामने खड़े दिखाई देते हैं।
मेरे लिए क्या लाई है? मैं शांतिकुंज में ही पहली बार गुरुजी माताजी से मिली। भिलाई की ही एक कार्यकर्ता विजया बहन मुझे अपने साथ लेकर आई थी। उनका मन था हरितालिका तीज की पूजा शांतिकुंज में करेंगे। उसी अनुसार कार्यक्रम बनाया और 4-5 दिन के लिए ही आए थे। मैं बेटे मनीष को पड़ोसी के पास छोड़कर आई थी। शांतिकुंज पहुंचकर जैसे ही मैं माताजी से मिली, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी रुलाई फूट गई।
माताजी ने अपनी गोद में मुझे भर लिया और मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ फिराने लगी। मैं और भी जोर से रोने लगी।
विजया बहन मुझे चुप हो जाने के लिए बोली तो माताजी बोली, रो लेने दे इसे, जी हल्का हो जाएगा।
बहुत दिनों बाद माँ से मिली है, न तो रोना तो आएगा ही। और माताजी प्यार से मेरा सिर सहलाती रहीं।
विजया बहन ने माताजी से कहा, माताजी अब तो आप इन्हें पकड़ ही लो। तब माताजी बोली, अब तो मैंने जकड़ लिया, अब कहाँ जाएगी। जब हम लोग हरितालिका तीज की पूजा करने गए तो गुरुजी माताजी दोनों ही बैठे थे।
बहिने उन्हें रोली चंदन लगाकर पूजा कर रही थी।
दोनों ऐसे मस्त बैठे थे जैसे साक्षात शिव पार्वती बैठे हों।
बहनों ने रोली चावल लगाकर उन्हें खूब रंग दिया था।
जब मेरी बारी आई तो माताजी गुरुजी से बोली, ये है हमारी बेटी, सुबह मैंने बताया था ना।
पहचाना इसे? गुरुजी ने गौर से मुझे देखा। मेरे हाथ में माताजी के लिए भेंट थी।
उसे देखकर माताजी बोली, तू तो हरितालिका व्रत नहीं करती, तेरे यहाँ तो करवा चौथ होती है। मैंने कहा, जी माताजी, पर मैंने सोचा पूजा तो कर ही लेती हूँ। फिर बोली, ये सब क्या है, इसकी क्या जरूरत थी?
बेटा, तेरा तो सब कुछ मेरा ही है। जल्दी जल्दी में गुरुजी के लिए मैं कुछ खरीद नहीं पाई थी, सो उनके लिए मैंने कुछ पैसे हाथ में रखे।
उन्हें देखकर विजया बहन ने कहा, गुरुजी को पैसे मत चढ़ा देना, वे बहुत नाराज होंगे। सो मैंने वह पैसे रुमाल में रख दिए। जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया, वे बोले, मेरे लिए क्या लाई है? मेरे हाथ में माताजी का दिया प्रसाद था। मैंने कहा, यही है। उन्होंने कहा, ला खिला, और मुंह खोल दिया। मेरे हाथ में आधा केला था, मैंने वही खिला दिया। विजया बहन ने कहा, गुरुजी मैं भी खिलाऊंगी। तो उन्होंने उनके हाथ से भी प्रसाद खा लिया। ये थी मेरी गुरुजी माताजी से पहली मुलाकात। माताजी ने पूरे 10 दिन हमें रोका, उसके बाद ही वापस आने दिया। एक वर्ष की स्वर्ण जयंती साधना।
इसके पश्चात सन 76 में गुरुजी ने हम लोगों से एक वर्ष की स्वर्ण साधना करवाई और भी बहुत सारे परिजनों से करवाई थी।
उस समय हम लोग भिलाई में ही थे। सूर्योदय से 45 मिनट पहले इस साधना को प्रारंभ करना होता था। पहले सोहम साधना, फिर तीनों शरीरों की साधना और अंत में खेचरी मुद्रा करनी होती थी। ठीक सूर्योदय के साथ अर्घ्य देकर साधना समाप्त होती थी। सबका समय निश्चित था। हमने नियमित रूप से यह साधना की। उस समय हमें खूब अनुभव हुए। साधना काल में प्रायः ही गुरुजी माताजी दिखाई देते।
कभी कभी वे श्री रामकृष्ण परमहंस व माँ शारदा के रूप में भी दिखाई देते।
इस साधना के पश्चात उन्होंने हमें शांतिकुंज बुला लिया।
शांतिकुंज में जब करवाचौथ पड़ी तो मैंने माताजी से पूजा के विषय में पूछा।
माताजी ने कहा, नीचे सब बहनें पूजा करती हैं, तुम भी उनके संग ही कर लेना। मैंने कहा, माताजी, जब साक्षात शिव पार्वती हैं, तो मैं मिट्टी के शिव पार्वती क्यों पूजूं? माताजी बोली, अच्छा ठीक है, जा गुरुजी से पूछ ले। मैंने गुरुजी से पूछा तो वे खड़े हो गए और बोले, अभी चलना है। मैंने कहा, नहीं गुरुजी, जब माताजी बुलाएंगी। वे बोले, अच्छा अच्छा, और बैठ गए। सभी बहनों को खबर भिजवाई गई। उस समय अधिकांश परिवार ब्रह्मवर्चस में रहते थे।
सब बहनें अपना सब काम छोड़कर फटाफट जो कुछ पास में था लेकर पहुंच गईं।
गुरुजी माताजी दोनों बैठ गए। हम सबने उनकी पूजा की, रोली चंदन भोग आदि लगाया। फिर गुरुजी ने सबको चाय पीने के लिए कहा। किसी बहन ने कहा, चांद को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खाएंगे पियेंगे। इस पर गुरुजी बोले, हमसे बड़ा भी कोई सूरज चांद है क्या? माताजी ने सबके लिए चाय बनवाए। उस दिन रविवार था। तब तक शांतिकुंज में टीवी आ चुका था। माताजी ने सबको पिक्चर दिखाई, खाना बनवाया, हलवा पूरी आदि, और सबको खाना भी खिला दिया। और इस सबके बीच चंदा मामा को तो सब भूल ही गए। जब घर लौटे तो रास्ते में चंद्रमा को अर्घ्य देने की बात याद आई। जल भरकर जो लोटे आदि रखे थे वह तो हम वहीं भूल आए थे। घर पहुंचकर जिस किसी ने पहले से जो कुछ तैयारी की हुई थी उसी से सबने छत पर जाकर पूजा कर ली और चांद को अर्घ्य दे दिया। पर गुरुजी माताजी की पूजा करके सब अति प्रसन्न थे।
उस दिन से गुरुजी माताजी करवाचौथ की पूजा में भी बैठने लगे थे।
उसके पहले तक केवल हरितालिका तीज पर ही बैठते थे।
मिश्रा भाभी जी परात लोटा आदि लाती, हम लोग दोनों के चरण धोते बाद में उस जल को चरणामृत मानकर पी जाते थे। महेंद्र शर्मा जी बताते हैं कि गुरुजी के निर्देशानुसार सन 73 में मैंने वानप्रस्थ लिया और नौकरी करने के साथ साथ क्षेत्रों में टोलियों में भी जाता रहा।
सन 77 में मैं उनकी आज्ञानुसार सपरिवार पूर्ण रूप से शांतिकुंज आ गया।
गुरुजी की सादगी, उनकी करुणा, मितव्ययता, छोटी छोटी बातों द्वारा शिक्षण देना, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी, स्वयं के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति उदार। यही शिक्षण उन्होंने हम लोगों को भी दिया।
वे कहते थे, बेटा, लोक सेवी को ऐसा ही होना चाहिए, अपने प्रति कठोर व अन्यों के प्रति उदार। वे सादगी को बहुत महत्व देते थे। अभी मैं नया नया ही आया था।
एक दिन गुरुजी ने मुझे मजदूर लाने के लिए भेजा। मैं बढ़िया से तैयार होकर नया कुर्ता पहनकर गया। मुझे कोई मजदूर मिला नहीं। लौटकर गुरुजी से कहा, गुरुजी मजदूर तो मिला नहीं।
गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले, 250 रुपये का चश्मा लगाएगा, बढ़िया कुर्ता पहनेगा, राजेश खन्ना बनकर जाएगा तो क्या तुझे मजदूर मिलेगा? एक दिन कुछ नेता लोग गुरुजी से मिलने आए। गुरुजी ने मुलाकात के बाद उनको भोजन कराया।
चौके की बहनों से कहा, बच्चियों,
भोजन तुम लोग परोसोगे, महेंद्र और शिव प्रसाद बर्तन उठाएंगे। जब वे लोग भोजन कर चुके तो हम दोनों ने बर्तन उठाए। गुरुजी देख रहे थे, बोले, अब इन्हें मांझ कर भी रखो, नेताजी आ रहे हैं। सोचकर हम लोग बढ़िया से प्रेस इत्यादि करके नए कुर्ते पहन कर गए थे। बर्तन मांजे तो उन पर पानी के छींटे पड़ने स्वाभाविक थे। जब बर्तन मांज गए तो गुरुजी ने बुलाया।
कुर्ते पर छींटे पड़े देखकर बोले, तुम लोग इस तरह फूहर तरीके से काम करते हो,
कुर्ता खराब कर लिया। फिर बोले, अच्छा
तुम लोग बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े बाप के बेटे हो,
टाटा बिरला हो, बढ़िया नया नया कुर्ता पहन कर काम करोगे।
ऐसे काम होता है, खादी की दुकान पर जाओ और वहां से सस्ती वाली खादी की आधी बाजू की बनियान हाफ कुर्ता लेकर आओ, उसे पहनकर काम किया करो। जब कभी टोली में जाओ, बाहर जाओ, तो अच्छा बढ़िया कुर्ता पहनो। खादी की आधी बाजू की बनियान पहनकर काम करोगे तो कपड़े खराब नहीं होंगे। इस प्रकार वे किफायत से रहना भी सिखाते थे।
गुरुजी की समय साधना। उनका जीवन बहुत पारदर्शी था। वे कुछ भी छिपाते नहीं थे, साथ ही वे एक पल भी नष्ट नहीं करते थे। एक दिन सुबह सुबह ही उन्होंने हम सबको बुलाया और बोले, बच्चों, आज मैंने कुछ लिखा नहीं,
मुझे रात को बुखार आ गया था। प्रणव से गोली भी ले ली पर कुछ हुआ नहीं, नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या करूं।
लेटे लेटे मैंने 2-4 साल की भविष्य की योजना ही बना डाली।
देखो, कागज पर नोट कर दी है।
उस योजना को बताने और समझाने के लिए ही मैंने गोष्ठी बुलाए है। एक दिन उन्होंने बताया, मैं रात को 12 बजे उठा।
आज मेरे पास लिखने को कुछ नहीं था, पर फिर भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जब तक मुझे लिखना होता है तब तक मैं बैठा। मेरी पलकें बता रही थीं कि कितनी भारी हैं, फिर भी मैं सोया नहीं। कारण, यह मन बड़ा शैतान है, सो जाता तो कल फिर सोने को कहता, इसलिए मैं उठकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया।
बेटा, इसी प्रकार मन पर आरूढ़ रहना चाहिए। एक बार फिर उन्होंने सुबह सुबह ही गोष्ठी बुलाई और बोले, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, हल्का सा बुखार भी लग रहा था।
लेटे लेटे सोचता रहा और मैंने प्रज्ञा पुराण के एक खंड का प्रारूप बना लिया।
देखो, बढ़िया है ना?
योजना भी बना डाली है, इसे 4 खंडों में निकालेंगे।
अच्छा, अब 4 दिन सुबह सुबह मेरे पास मत आना।
तुम लोगों को 4 दिन का काम आज ही बता देता हूँ। उन्होंने सबको काम बताया और बोले, तुम लोग जाते जाते बाहर से ताला लगा देना। 4 दिन में उन्होंने प्रज्ञा पुराण के सब श्लोक लिख डाले और हम लोगों को यह कहकर सौंप दिया, अब इसमें कहानियां जोड़ देना।
इस प्रकार प्रज्ञा पुराण तैयार हो गया। हम लोग सोचते थे कि गुरुजी को बुखार नहीं आना चाहिए।
बुखार में भी बाबा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और सालों की योजना बना डालते हैं, फिर हम लोगों को भिड़ा देते हैं।
इसी क्रम में मुझे एक प्रसंग और स्मरण आता है, जिसे चर्चा के दौरान भोपाल के श्री शांतिलाल आनंद ने सुनाया था। शायद सन 1988 की बात होगी। एक दिन शांतिलाल जी और गौर जी नीचे गायत्री नगर में टहल रहे थे। इतने में ही श्री संजय सिंह, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे व उस समय भी मंत्री थे, वहां पधारे।
दोनों ने उन्हें नमस्कार किया।
उन्होंने गुरुजी से शाम को 6 बजे मिलने का समय ले रखा था और उस समय 6:45 हो रहे थे, किंतु यह बात श्री गौर जी को मालूम नहीं थी। वे बड़ी आवभगत के साथ उन्हें शांतिकुंज प्रतीक्षालय तक ले गए। शांतिलाल जी भी साथ थे।
उन दोनों को नीचे रुकने के लिए कहकर गौर जी स्वयं ऊपर गए और गुरुजी से संजय सिंह जी के आने की बात बताई।
गुरुजी सुनते ही गौर जी से नाराजगी भरे शब्दों में बोले, इन्हें समय का महत्व नहीं है, लौटा दो।
मैंने 6 बजे का समय दिया था, 7 बज रहे हैं।
अब मैं नहीं मिलूंगा, कहो कल समय पर मिलें। गौर जी को तो मानो काट मार गया हो।
क्या करें, कुछ सूझ नहीं रहा था। मंत्री जी से कैसे कहें कि गुरुजी नहीं मिलेंगे, पर कहना तो पड़ेगा ही।
सो विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, साहब, उन्होंने आपको शायद 6 बजे का समय दिया था, वे उस समय तक आपका इंतजार कर रहे थे।
अब वे दूसरे महत्वपूर्ण कार्य में लग चुके हैं।
उन्होंने कल पुनः बुलाया है, समय का ध्यान रखेंगे, महापुरुषों का समय बहुत मूल्यवान है, कहकर बेचारे मंत्री जी ने अपनी गलती सरल भाव से स्वीकार की व दूसरे दिन ठीक समय पर आकर गुरुदेव से मुलाकात की।
सन 1989 में एक दिन हम कुछ लोगों, डॉक्टर
प्रणव भाई साहब, उपाध्याय जी, सोनी जी, कपिल जी आदि को बुलाया और बोले, मैंने बहुत कुछ लिख दिया,
सोचता हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए गीता जैसा मार्गदर्शन दे देता हूँ,
इसलिए देखो मैंने ये किताब लिखी है, पढ़कर देखो कैसी है। उस पुस्तक का नाम था सतयुग की वापसी। हम सबको पुस्तक बड़े गजब की लगी। फिर कुछ दिनों में ही उन्होंने 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, परिवर्तन के महान क्षण, आद्यशक्ति गायत्री की समर्थ साधना, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार, 21वीं सदी का गंगावतरण आदि पुस्तकें लिखी और हम लोगों से कहा कि तुम लोगों ने भले ही मेरा सारा साहित्य पढ़ लिया हो, पर इनको जरूर पढ़ना और आने वाले लोगों को इन्हें जरूर पढ़ाना। हमने पूछा, गुरुजी, इस सेट का नाम क्या होगा? गुरुजी बोले, ये क्रांतिधर्मी साहित्य होगा। हम लोगों ने लगभग 6 माह तक बाकायदा कक्षाएं चलाकर इस साहित्य को पढ़ा और पढ़ाया, पर जितनी बार भी पढ़ते उतनी बार कुछ नया ही मिलता। एक बार गुरुजी को बहुमूत्र की शिकायत हो गई, वे मीटिंग करते करते उठकर चल देते थे।
जब तक हम सोचते, जिज्ञासा करते, तब तक वे लौट आते और स्वयं ही बता देते कि आजकल मुझे बार बार पेशाब लग जाती है, इस उम्र में हो जाता है, शायद कुछ समस्या होगी, ठीक हो जाएगी। इस प्रकार वे अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें भी छिपाते नहीं थे।
एक बार उन्होंने गोष्ठी में बताया, नालंदा और तक्षशिला 2 विश्वविद्यालय थे, इनसे भी बड़ा विश्वविद्यालय बनाएंगे, इसलिए उन्होंने प्रतीक स्वरूप 2 हॉलों का नाम तक्षशिला और नालंदा रखा और वहां पर प्रशिक्षण भी प्रारंभ करवा दिए। मितव्ययिता उनके जीवन में कूट कूट कर भरी थी।
अपने लिए तो गुरुजी माताजी दोनों ही एक पैसा अतिरिक्त खर्च नहीं कर सकते थे।
औसत भारतीय नागरिक के स्तर का जीवन जीना उनका संकल्प था, वही अनुशासन उन्होंने हमारे लिए भी बनाया। एक बार श्री गजाधर सोनी जी भाई साहब ने देखा कि गुरुजी का जूता फट रहा है।
उनके मन में आया कि वे गुरुजी के लिए जूता खरीद लाएं।
उन्होंने गुरुजी से पूछा और जूता खरीद लाए।
गुरुजी बहुत महंगा जूता नहीं पहनते थे, पर गजाधर जी के मन में आया कि वे थोड़ा अच्छा वाला जूता खरीदेंगे। उन दिनों आज के जैसे महंगाई नहीं थी।
गुरुजी जिस ब्रांड का जूता पहनते थे वह 11 रुपये का था। गजाधर जी को लगा थोड़ा अच्छा वाला खरीद लेता हूँ। उन्होंने दो जोड़ी खरीदी।
मन में सोचा कि एक गुरुजी के चरणों से स्पर्श कराकर अपनी पूजा में स्थापित करूंगा।
वे जूता खरीदकर गुरुजी के पास पहुंचे। जैसे ही गुरुजी ने उसे पहना तुरंत बोले, यह तो वैसा नहीं है जैसा मैं पहनता हूँ। यह जरूर महंगा होगा। कितने का लाए हो?
सोनी जी ने कहा, गुरुजी आप तो बस पहन लीजिए।
गुरुजी ने कहा, नहीं तू बता, तू कितने का लाया है? सोनी जी ने बताया, गुरुजी 21 रुपये का है। सुनकर गुरुजी बोले, मैं जो पहनता हूँ वह 11 रुपये में आ जाता है।
इतने में तो दो जोड़ी जूते आ जाते और कितने दिन निकल जाते। इसे ले जाओ और पहाड़िया जी से कहना कि वे इन्हें लौटाकर वही जूता खरीद लाएंगे जो मैं पहनता हूँ।
गुरुजी के बाथरूम का दरवाजा बहुत पुराना हो गया था।
बाहर से तो ठीक दिखता था, परंतु अंदर से सड़ गया था। वह कभी भी टूट सकता था।
उपाध्याय जी व प्रणव जी भी उसे बदलने के पक्ष में थे,
परंतु समस्या यह थी कि गुरुजी से कहे कौन,
वह तो तैयार नहीं होंगे। योजना बनाई गई कि गुरुजी को बरामदे में ले जाकर बातचीत में व्यस्त कर लेंगे। इतनी देर में बड़ई दरवाजे का नाप ले लेगा। उन दिनों बाबूराम बड़ई यहाँ काम करता था।
उसे समझा दिया गया और योजना अनुसार उसने नाप भी ले लिया। उसे कहा भी गया था कि तुम गुरुजी के सामने मत आना, किंतु वह गुरुजी को प्रणाम करने का लोभ संवरण नहीं कर पाया। सो नाप लेने के बाद उसने बरामदे में आकर गुरुजी को प्रणाम किया।
उसके प्रणाम करते ही गुरुजी ने उससे पूछा, तुम किस काम से आए? उसने कहा, बस गुरुजी आपको प्रणाम करने आया था। गुरुजी को उसके जवाब से संतुष्टि नहीं हुई। बोले, नहीं, तुम जरूर किसी काम से आए होगे। यह तुम्हें लाया होगा। बताओ किस काम से आए थे? उसने डरते डरते कहा, गुरुजी बस थोड़ा बाथरूम के दरवाजे का नाप लेना था। गुरुजी तुरंत समझ गए और कहा, किसने कहा बदलने को?
हमने तो कहा नहीं। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोले, क्यों, उसे क्या हुआ है? मैंने बताया, गुरुजी वह अंदर से सड़ गया है,
बदलना आवश्यक है। गुरुजी ने दरवाजे को खोला, बंद किया, फिर बोले, इसे केवल मैं ही तो इस्तेमाल करता हूँ। यह ठीक है, अभी काफी दिन तक चलेगा। तुमको मालूम है दरवाजा 1000 रुपये का आता है। हमारा दरवाजा ठीक है, हमारा दरवाजा नहीं बदलेगा। और मैं उनकी डांट सुनकर चुपचाप नीचे आ गया।
उनकी दृष्टि में यह अपव्यय था। जब तक किसी वस्तु से काम चल रहा है तब तक उसको काम में लाया जाना चाहिए। वे अपने प्रति थोड़ा भी अतिरिक्त खर्च सहन नहीं करते थे। ऐसे ही माताजी के पलंग का एक पाया हिल गया था।
बार बार की लादी ठोंक कर उसे ठीक करते, वह बार बार बाहर निकल जाता। उसे बदलना जरूरी था।
माताजी जब सोने के लिए ऊपर जाती तो उस पाए के पास गुरुजी ने कुछ ईंटें रखवा दी थी। उन्हें पहले पाए के पास लगा दिया जाता, फिर माताजी उस पलंग पर लेटती। पलंग भी काफी पुराना हो गया था। गुरुजी से पलंग बदलने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। बोले, 1200 रुपये में पलंग आता है, इसे ही ठीक कर दो, काम चलता रहेगा। हम भाइयों ने योजना बनाई कि हम लोग माताजी के लिए पलंग बनाएंगे। माताजी के लिए नया पलंग बनाया गया। अब उसे कमरे में पहुंचाना था।
योजना अनुसार डॉक्टर प्रणव जी गुरुजी को ब्रह्मवर्चस ले गए।
पीछे से हम लोगों ने पलंग बदल दिया। रात को जब माताजी लेटने लगी तो नींद रखने कोई नहीं गया।
गुरुजी ने लड़कियों से कहा, सुनो सुनो,
यहाँ कहीं चार ईंटें रखी होंगी, लाओ। ईंटें तो हम उठा लाए थे, सो मिलती कहाँ?
गुरुजी बोले, वो महेंद्र कहीं रख गया होगा, उसे बुलाओ। मैं गया। मैंने माताजी से कहा, आप बैठो। माताजी बैठ गईं। मैंने कहा, पलंग हिल तो नहीं रहा।
आज ईंट की जरूरत नहीं है। गुरुजी बोले, क्यों नहीं है?
ईंट लगाओ। माताजी बोली, जब हिल नहीं रहा है तो रहने दो। गुरुजी अपने पलंग से उठे और बोले, हिल नहीं रहा है। उसे हिलाया डुलाया, फिर बिस्तर उठाकर देखा और बोले, बदल तो नहीं दिया? अब तो सच बताना ही था। मैंने कहा, जी साहब, बदल दिया। गुरुजी थोड़ा नाराज हुए और बोले, 1200 रुपये में पलंग आता है।
तुम्हें मालूम है, एक एक पैसा जनता देती है। वह कितनी कठिनाई से कमाती है फिर हमें भेजती है। मैंने कहा, गुरुजी, हम लोग माताजी के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? वह हमारी भी तो माताजी हैं। गुरुजी बोले, जरूर करो, पर अपनी कमाई में से करना। मैं जनता की कमाई में से अपने लिए एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकता। और देखो, तुम लोग भी कभी जनता की कमाई में से अपने लिए एक भी पैसा खर्च मत करना।
मुक्ति दीदी बताती हैं कि गुरुजी की कुर्सी की गद्दी बहुत पुरानी हो गई थी, थोड़ी फटने जैसी भी हो गई थी।
हम लोग उसके लिए कपड़ा खरीद लाए।
जब गुरुजी प्रवचन करने गए तो उसका नाप ले लिया और फिर अगले दिन उसी समय पर उसे चढ़ा भी दिया।
गुरुजी ने लौटकर गद्दी पर नया कवर देखा तो पूरी खोजबीन की, किसने बनाया, कहाँ से आया।
किसी ने बता दिया कि मुक्ति दीदी को देखा था, शायद उन्हीं का काम होगा। अगले दिन उन्होंने मुझसे पूछा, गद्दी तू ठीक कर गई क्या? मैंने कहा, जी पिताजी, पुरानी हो रही थी, थोड़ी फट भी रही थी।
आपके पास लोग बाग मिलने आते रहते हैं तो ठीक नहीं लग रही थी। गुरुजी थोड़ी देर चुप रहे,
फिर बोले, अच्छा बेटा, ठीक है,
यह तो ठीक लग रही है। पर गुरुजी सहज में पैसा खर्च नहीं करने देते थे,
वे मितव्ययिता को बहुत महत्व देते थे।
माताजी भी सहज में पैसा खर्च करने नहीं देती थी।
एक बार मैं माताजी के लिए एक साड़ी खरीद लाई। माताजी ने जब देखी तो बोली, छोरी, मेरे पास तो पर्याप्त साड़ी रखी है और तू तो महंगी साड़ी ले आई, ऐसा कर, इसे वापस कर दे। मैंने कहा, नहीं माताजी, ज्यादा महंगी नहीं है। माताजी बोली, तेरे पास बिल होगा, दिखा।
मैं किसी को भेज दूंगी, वो वापस कर आएगा। मैंने कहा, माताजी, मेरे पास बिल नहीं है और यह वापस भी नहीं हो सकती। मैंने आपके लिए खरीदी है, आपको इसे पहनना ही है। मैंने माताजी के साथ जिद की तो माताजी बोली, अच्छा, तू जिद करती है तो रख लेती हूँ, पर देख, पैसा तेरा है तो भी वो हमारा ही है, आगे से खर्च करना तो देख कर करना।
गुरुजी गोष्ठियों में कभी कभी कहते थे, बेटा,
फटा हुआ सिलकर पहन लेना, पर किसी से कभी मांगना नहीं। डॉक्टर
रामप्रकाश पांडे जी को एक दिन एक आदमी ब्लेड की डिब्बी दे गया। उन्होंने वह ब्लेड माताजी को दे दिए। इस पर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए।
वह बहुत बार उस प्रसंग की चर्चा करते और कहते, बेटा, कोई आदमी कोई चीज दे जाए तो माताजी के पास दे देना, उसे अपने लिए इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम पर उसका भार चढ़ जाएगा। अपने निजी खर्च के संबंध में वे कितने अनुशासित थे, इस विषय में एक दिन श्रीकृष्ण अग्रवाल जी ने बताया। यह उन दिनों की बात है जब आश्रमवासियों की आवश्यकता हेतु त्रिपदा -15 में कुछ आवश्यक सामान रखने हेतु छोटी सी दुकान बनाई गई थी और मुझे इस काम के लिए नियुक्त कर दिया गया था।
दीपावली का दिन था, दुकान में पटाखे भी आए हुए थे। तब चीनू श्री चिन्मय पंड्या का घरेलू नाम बहुत छोटा था। गुरुजी उसे गोदी में लिए हुए दुकान पर आए और बोले, बेटा, चीनू के लायक पटाखे निकाल दो, जो चाहिए ले लीजिए गुरुजी। मैंने कुछ पटाखे सामने रखते हुए कहा।
गुरुजी ने कुछ पटाखे बच्चे के हिसाब से छांटे और कहा, इसे बांध दो और कितना पैसा हुआ बताओ। मैं हैरान होकर गुरुजी की ओर देखने लगा, सोचा, दुकान तो गुरुजी की ही है, फिर भी इतने थोड़े से पटाखों के पैसे पूछ रहे हैं।
मैंने झट से कहा, गुरुजी, दुकान आप ही की है, इसके पैसे नहीं लगेंगे। यह सुनकर गुरुजी नाराजगी भरे स्वर में पर समझाते हुए बोले, देख बेटा, फिर ऐसी बात मत कहना,
दुकान मिशन की है,
मैं पैसे दिए बिना नहीं लूंगा,
तू चाहे तो इन्हें रख ले। अब तो मेरी बोलती बंद हो गई, बच्चे के पटाखे कैसे रख लेता।
मैंने तुरंत हिसाब जोड़कर पैसे बताए, 2 रुपये 9 आने। पैसे देकर ही गुरुजी पटाखे लेकर गए।
गुरुजी माताजी ने अपने बच्चों से भी सहनशीलता की साधना कराई। इस विषय में एक प्रसंग मैंने वाण्मय खंड 1 में पढ़ा था,
पढ़कर मेरा मन भर आया। प्रसंग इस प्रकार है, शैल जीजी तब लगभग 6-7 साल की थी।
एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्हें रास्ते में 1 रुपया पड़ा मिला।
उन्होंने उसे उठा लिया, सामने खिलौने की दुकान थी।
उनका बालमन खिलौनों के लिए मचल गया। मन ने कहा, पड़े हुए सिक्के को उठा लेना कोई चोरी तो है नहीं।
सो उन्होंने खिलौने की दुकान से गुब्बारे, खिलौने आदि खरीदे और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में घर पहुंची।
घर पहुंचते ही माताजी की पहली नजर उनके नन्हे नन्हे हाथों में थमे खिलौनों और गुब्बारों पर पड़ी। माताजी के पूछने पर उन्होंने सब बता दिया। माताजी ने प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, देखो बेटी, इन सब चीजों को दुकान पर वापस कर आओ और पैसे को किसी मंदिर में डाल दो। आखिर क्यों, 6-7 साल की नन्ही बच्ची के मन ने प्रश्न किया।
मैंने तो कोई चोरी नहीं की, पैसे तो पड़े मिले थे। पड़े मिले तो क्या हुआ, बिना मेहनत का पैसा भी चोरी का ही है, माताजी ने समझाया और खिलौने लौटा दिए गए। पैसा पास के मंदिर में चढ़ा दिया गया। कुछ समय पहले खेलने के लिए मचल रहा मन आदर्श के आगे झुक गया। श्री चैतन्य जी व उस समय के अन्य परिजन डॉक्टर दत्ता, लीलापत शर्मा जी आदि बताते हैं कि जब पूज्य गुरुदेव के बड़े बेटे श्री ओम प्रकाश शर्मा जी गुड़गांव में अपना मकान बना रहे थे,
उन्हें कुछ पैसों की आवश्यकता थी।
यह बात मथुरा में तपोभूमि के कार्यकर्ताओं को पता चली।
उधार में पैसे की व्यवस्था कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी,
किंतु पूज्यवर से कहे कौन,
किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी।
उनकी परेशानी देखकर एक कार्यकर्ता से रहा नहीं गया, सो एक दिन उसने हिम्मत बटोरकर गुरुजी से कह ही दिया, गुरुदेव ओम प्रकाश भाई साहब को पैसे की आवश्यकता है,
उधार में कुछ पैसे की व्यवस्था कर देते तो अच्छा होता। सुनकर गुरुजी नाराज होकर बोले, आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, मिशन का पैसा बेटे को मकान बनाने के लिए दे दूं, क्या मुझे चोर समझ रखा है,
बेईमान उचक्का समझ रखा है। अब तो कहने वाले भाई की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, फिर भी सफाई के तौर पर धीरे से बोले, गुरुजी हमने तो उधार की बात कही थी, परंतु वे कहां सुनने वाले थे।
इस पर और भी नाराज हुए और बोले, घर उसे बनवाना है तो उधार की व्यवस्था भी स्वयं करे, हम मिशन के पैसे को अपने बेटों के लिए छू भी नहीं सकते। इसी प्रकार जब डॉक्टर
प्रणव जी का एक्सीडेंट हुआ था,
उस समय भी गुरुजी ने मिशन के पैसे को उनके इलाज के लिए उधार रूप में भी ग्रहण नहीं किया।
जब सतीश भाई साहब मथुरा से पैसे लेकर आए तब उन्हें दिल्ली ले जाया गया। श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी उन्हें दिल्ली लेकर गए थे। श्री सतीश भाई साहब गुरुदेव के सुपुत्र की शादी के समय का एक प्रसंग जिसकी वीरेश्वर भाई साहब अक्सर चर्चा करते हैं, वह भी बताती हूँ। सतीश भाई साहब की शादी का उत्सव प्रारंभ हो चुका था। सब मेहमान घियामंडी मथुरा पहुंच चुके थे, फिर भी पूज्यवर के सभी कार्यक्रम पहले की तरह ही नियमित रूप से चल रहे थे,
कहीं कोई सजावट या परिवर्तन नहीं था।
शिविरार्थी तो पूज्यवर के आदर्श पर निढाल थे, किंतु रिश्तेदारों को सजावट के कुछ भी चिन्ह दिखाई न देने से खल रहा था।
पर गुरुदेव से कहे कौन, गुरुजी से कहने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सभी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। आखिर में श्री सत्य प्रकाश जी, सतीश भाई साहब की मौसी के लड़के, जिन्हें घर में सब सत्तो कहकर पुकारते थे, उन्होंने जाकर गुरुजी से अपनी ब्रज भाषा में कह ही दिया,
क्या मौसा जी, कुछ अच्छो ना लागत है, लड़कों को ब्याह है, कुछ झालर वालर तो होना ही चाहिए। गुरुदेव ने उनकी बात सुनी व कहा, अच्छा देखता हूँ।
मैं वहीं खड़ा था,
मुझे इशारे से बुलाया व कहा, देख वीरेश्वर
सत्तो क्या कह रहा है,
जा एकाध झालर लगवा दे। मैंने सत्यप्रकाश जी से चर्चा की व दुकान में ऑर्डर दे आया। उनके स्तर के अनुरूप कम से कम 50 रुपये का झालर तो लगना ही चाहिए, ऐसा सोचकर ऑर्डर दे आया। दूसरे दिन प्रातः पूज्यवर ने पूछा, वीरेश्वर झालर के लिए कहा क्या। हाँ गुरुजी, कितने का। जी 50 रुपये का। सुनकर गुरुजी बोले, जा जा मना कर दे, मुझे नहीं लगाना 50 रुपये का झालर। मैं चौंक कर गुरुदेव का मुंह ताकने लगा, सोचा कल ऑर्डर दिया आज कैसे मना करूं।
क्या सचमुच मना करना पड़ेगा, अभी सोच ही रहा था कि इतने में उन्होंने फिर कहा, जा जल्दी मना कर दे, नहीं तो वह लगा जाएगा। अब तो कोई चारा नहीं था,
साइकिल उठाकर मना करने हेतु चल पड़ा। दुकानदार नौकर को झालर देकर रवाना ही कर रहा था, नौकर वहीं कुछ आवश्यक सामान निकाल रहा था। मैंने जाते ही कहा, आचार्य जी ने कल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, अतः न भिजवाएं। दुकानदार ने पहले तो एक टक देखा, फिर नौकर से कहा, बस रहने दो, वहां का ऑर्डर कैंसिल है, आज तो बच गए। सोचते हुए वह इससे पहले कि दुकानदार कुछ भला बुरा कहे, मैं दुकान से खिसक लिया। उन्हें फिजूल खर्ची तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी,
उन्हें पुत्र के विवाह पर जरा सी रोशनी करना भी अनावश्यक सजावट लगता था।
ऐसे निष्प्रिय महापुरुष ही अपने लिए कठोरता अपनाकर किसी बृहद मिशन का निर्माण करने में सक्षम हो पाते हैं। गुरुजी माताजी चाहते थे कि हम कार्यकर्ताओं के जीवन में भी सादगी दिखाई देनी चाहिए।
एक बार सर्दियों में मैं अपने घर आगरा गई हुई थी,
कड़ाके की ठंड थी,
लौटते समय रास्ते में ठंड न लगे इसलिए मैंने कोट पहन लिया,
कोट जरा कीमती था। रात में 8:39 बजे के लगभग मैं शांतिकुंज पहुंची।
पहुंचते ही गुरुजी के पास प्रणाम करने के लिए गई।
जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया उन्होंने बड़े ध्यान से देखा और बोले, अच्छा
कोट पहन कर आए हैं,
कोट कहाँ से मांग लाई। मैंने कहा, गुरुजी मेरा ही कोट है, किसी से कहाँ से मांगती। इस पर गुरुजी बोले, अच्छा बेटा मांगना नहीं किसी से,
अब पहन आए हैं तो कोई बात नहीं, पर बेटा यहाँ हम सबको ब्राह्मण जीवन जीने की बात कहते हैं, सादगी से रहने की बात कहते हैं, तू इसका ध्यान रखना। उस दिन के बाद से मैं गुरुजी के सामने वह कोट पहनकर नहीं गई। एक बार करवा चौथ के त्योहार के दिन मैंने और शैलो जीजी ने बढ़िया से गहने आदि पहने और गुरुजी माताजी को प्रणाम करने व उनका पूजन करने गए। पिताजी गुरुजी ने हमें बड़े गौर से देखा,
फिर माताजी से बोले, माताजी ये तो हमारी बेटियां नहीं लगती। उनकी दृष्टि में कुछ ऐसे भाव थे कि हम लोग उनसे नजर नहीं मिला पाए, पर हम उनका भाव समझ गए थे।
हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे तैसे फटाफट पूजा की और दौड़कर नीचे आ गए। दोनों ने परस्पर कोई चर्चा नहीं की, अपने अपने कमरे में गए और सब गहने आदि उतार कर रख दिए। फिर कभी दोबारा हम लोगों ने उस दिन जैसे गहने नहीं पहने।
गुरुजी को बहनों का जरूरत से ज्यादा सजना धजना पसंद नहीं था। वे कहते थे, बेटा सादगी में ही असली सौंदर्य है। ब्राह्मणोचित जीवन, सादगी भरा जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए वे अक्सर समझाते, बेटा ये हमारी उड़ी हुई गरीबी है। लोकसेवी को कम से कम सुविधा साधन बटोरने चाहिए। वे छोटी छोटी बातों द्वारा ही महत्वपूर्ण शिक्षण दे दिया करते थे। एक दिन गुरुजी के पास एक सज्जन आए। एक बालक उनके लिए पानी लेकर आया। गुरुजी ने उन सज्जन के जाने के बाद उस बालक को व अन्य जो लोग बैठे थे सबको समझाया, जब भी किसी को पानी दो तो गिलास को ढंकना चाहिए और नीचे भी एक तश्तरी रखनी चाहिए। यदि एक हाथ से गिलास पकड़ा है तो दूसरा हाथ नीचे लगाओ,
थोड़ा झुककर और दोनों हाथ से पानी देना चाहिए।
गिलास के नीचे तश्तरी रखना विनम्रता का प्रतीक है और गिलास को ढंकना निरहंकारिता का।
प्रारंभ के दिनों में बिजली नहीं थी, हम लोग भी लालटेन जलाकर काम करते थे।
एक दिन गुरुजी ने समझाया, लालटेन की बत्ती ठीक कर लेनी चाहिए। बत्ती को ऊपर से छोटी कैंची से काट लेना चाहिए,
इससे रोशनी तेज हो जाती है और तेल भी कम खर्च होता है।
करुणा के सागर, सामर्थ्य के पुंज।
दूसरों के कष्ट से उन्हें ऐसी पीड़ा अनुभव होती थी जैसे वे स्वयं ही कष्ट भोग रहे हों। हमने उन्हें दूसरों के कष्ट में रोते भी देखा।
तब एक पल को तो हम स्तब्ध रह गए, इतनी करुणा।
वे श्री रामकृष्ण परमहंस की ही भांति शिष्यों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते थे और उन्हें कष्ट से मुक्ति दिलाते थे।
तुलसीपुर के गोयल जी बड़े ही समर्पित कार्यकर्ता एवं शांतिकुंज के ट्रस्टी रहे हैं। उनकी बेटी विजय गोयल का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। हालत बहुत गंभीर थी।
पूरा जबड़ा इस तरह से टूट गया था कि चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो रहा था।
गोयल जी ने तुरंत शांतिकुंज गुरुजी के पास टेलीग्राम किया, बेटी की हालत गंभीर होती गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो गोयल जी तुरंत रात में 8 o'clock बजे ही पत्नी सहित शांतिकुंज के लिए चल दिए।
सुबह जब वे गुरुजी से मिलने पहुंचे तब गुरुजी हम कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और टेलीग्राम देखकर बोले कि गोयल जी की बेटी में अब कुछ रहा नहीं है।
इतने में दोनों पति पत्नी गुरुजी के पास पहुंचे और बिलख बिलख कर रोने लगे, गुरुजी कैसे भी हो हमारी बेटी को बचा लीजिए। दोनों की हालत देखकर गुरुजी के नयन भी भर आए, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर बोले, अच्छा बेटा मैं प्रार्थना करूंगा, तू लौट जा। अगले दिन जब हम प्रणाम करने पहुंचे तो देखा गुरुजी का चेहरा बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत गहरी कोई चोट आई हो। मैंने पूछा तो बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुझे ऐसे ही दिख रहा है, कोई भ्रम हो रहा है। अगले दिन उनका चेहरा सामान्य हो गया।
उधर गोयल जी की बेटी की हालत में आश्चर्यजनक सुधार हो गया था।
गुरुजी ने अपने शिष्य का कष्ट स्वयं पर लेकर उसे संरक्षण दिया था।
एक और घटना है।
उन दिनों हम पूर्ण रूप से शांतिकुंज नहीं आए थे, भिलाई में ही रहते थे। हमारे साथ भिलाई की एक कार्यकर्ता कामिनी बहन हमारे साथ आई थी।
उनके विवाह को कई वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी, इस कारण परिवार के लोग उन्हें परेशान करते थे। यहाँ तक कि पति भी अब दूसरा विवाह कर लेने की बात कहने लगे थे। मिशन का काम करने पर भी पति उन्हें ताने देते और कहते कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, तब तुम आराम से अपने गुरु का काम करना।
गुरुजी के पास जाकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी व्यथा सुनकर गुरुजी की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। जितना वह रो रही थी उतना ही गुरुजी भी रो रहे थे। हम सब देखकर हतप्रभ थे।
गुरुजी की हालत देखकर हम कामिनी बहन से धीरज रखने को कहकर उन्हें शांत हो जाने के लिए कहने लगे।
फिर थोड़ी देर में गुरुजी बोले, जा बेटी अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा, तू बस मेरा काम करती रहना। जल्दी ही हम लोग स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गए। कामिनी बहन को शांतिकुंज से लौटने के 9 माह बाद ही एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। कुछ वर्षों बाद वे बालक को गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने के लिए शांतिकुंज लेकर आईं।
जब हमने बालक के विषय में पूछा तो अश्रुपूरित नेत्रों से कहने लगी, आप भूल गए जब मैं रोते हुए गुरुजी के पास आई थी, उन्होंने ही मेरी झोली खुशियों से भर दी है।
श्री केसरी कपिल जी एवं श्रीमती देवकुमारी श्रीवास्तव।
श्री केसरी कपिलजी 1969 में टाटानगर में पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए। उसके बाद लगातार संपर्क में रहे, क्षेत्र से ही समयदान करते रहे, गुरुदेव के साथ भी टोलियों में जाने का सौभाग्य मिला।
जून 1977 में पूज्य गुरुदेव के बुलाने पर सपरिवार स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गए। काल को भी मुट्ठी में रखने वाले महाकाल हमारे गुरुदेव। सन 1969 में पूज्य गुरुदेव हमारे यहाँ टाटानगर आए थे। उनका कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में 10 अप्रैल को हमने गुरु दीक्षा ली।
उन दिनों गुरुदेव पुष्पांजलि अपने हाथ में लिया करते थे।
जब दीक्षा की पुष्पांजलि देने गुरुदेव के पास गई तो उन्होंने कहा, बेटा परिवार और सामान न बढ़ाना। मैंने कहा, गुरुदेव कल ही तो आपने पुंसवन संस्कार कराया है। तो बोले, बेटा यह संतान तुम्हारा भविष्य बदलने आ रही है।
तुम्हारी यह संतान बहुत सौभाग्यशाली होगी, पर आगे परिवार और सामान मत बढ़ाना। मैं सोचने लगी, परिवार की बात तो समझ में आई, पर सामान की बात समझ में नहीं आई। बात आई गई हो गई।
कहते हैं कि समर्थ गुरु शिष्य को कुछ देने से पहले कठिन परीक्षा लेता है, सो हमारी भी परीक्षा शुरू हुई। 26 अप्रैल को मेरा छोटा पुत्र शशि शेखर, जो उस समय 3 वर्ष का था, डौला बीमार हो गया। 1 माह होने को आया पर उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि स्थिति और भी नाजुक होती जा रही थी। पूरी पारिवारिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। विचित्र स्थिति थी। बालक हर समय बेहोश रहता था। डॉक्टर हमारे पतिदेव के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते थे,
क्योंकि वे बालक के सिर पर हाथ रखकर जब गायत्री मंत्र बोलते तो वह आंखें खोल देता,
जिसे देखकर डॉक्टर दवा लिखते थे। 25 मई को उसकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई। जब उसका कष्ट असह्य हो गया तो पतिदेव श्री कपिल जी ने मेरे आग्रह पर गुरुदेव को पत्र लिखा कि बालक का कष्ट देखा नहीं जाता,
यदि बचा सके तो ठीक, नहीं तो उसे दुनिया से उठा भी ले तो डैख नहीं,
उसे कष्ट से तो मुक्ति मिले। गुरुदेव तक पत्र पहुंचने में कम से कम 5 दिन तो लगते ही थे, पर आश्चर्य 29 मई को ही गुरुदेव का जवाबी पत्र पहुंच गया। पत्र 25 मई को लिखा गया था।
ऐसा लगा जैसे यहाँ हम पत्र लिख रहे थे और वहाँ वह जवाब लिख रहे थे।
लिखा था, तुमने भले न बताया हो पर तुम्हारे बालक की अस्वस्थता की जानकारी हमें है। घबराना नहीं, बालक शीघ्र घर जाएगा और पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। पत्र मिलने के 4th दिन ही 2 जून को बालक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उसके स्वास्थ्य में क्रमशः सुधार भी होता गया। जून 1969 में मथुरा में 9 दिवसीय गायत्री अनुष्ठान सत्र पूज्य गुरुदेव के सान्निध्य में चल रहे थे। मेरे पतिदेव को भी जाना था। मेरे प्रसव का समय नजदीक था। तीनों बच्चे भी छोटे ही थे।
पतिदेव की अनुपस्थिति में सब व्यवस्था कैसे होगी,
मुझे यह चिंता सताई जा रही थी।
एक रात हम दोनों ने स्वप्न में देखा कि एक श्वेतांबर महिला हमारे आंगन का चक्कर काटकर मेरे कमरे में आकर कहने लगी, तू क्यों चिंता करती है,
मैं तो तेरे पास आ गई हूँ, तुम्हारी देखभाल मैं करूंगी।
उसी दिन शाम को मेरी नंद हमारे घर आ गई और मेरे पतिदेव मेरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर मथुरा के लिए तैयार हो गए।
पतिदेव से जाते समय मैंने निवेदन किया कि आपकी उपस्थिति में ही प्रसव होता तो मैं निश्चिंत रहती। कृपया पूज्य गुरुदेव को मेरा यह संदेश दे दीजिएगा। श्री कपिल जी ने तपोभूमि मथुरा में पहुंचकर जब गुरुजी से सब बात बताई तो गुरुजी ने कहा कि घर की चिंता अब तुम्हारी नहीं,
वहां की देखरेख हम कर लेंगे।
तुम यहाँ अनुष्ठान करो और यदि तुम्हारी पत्नी की इच्छा है कि प्रसव तुम्हारी उपस्थिति में ही हो तो मैं उसका प्रसव काल 1 महीने आगे बढ़ा देता हूँ। इधर हमारे आश्चर्य और प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। 12 दिन मेरे पतिदेव हमसे दूर रहे, किंतु प्रत्येक दिन गुरुदेव और वंदनीय माताजी मुझे हर पल अपनी उपस्थिति का आभास कराते रहे। कभी कभी तो गुरुजी का कुर्ता स्पष्ट दिखाई देता।
गुरुजी के पूरे दर्शन तो नहीं हुए पर उनका बराबर एहसास होता रहा। माताजी तो घर में घूमते हुए व बच्चों के बिस्तर पर लेटी हुई अक्सर ही दिखाई देती। उन्हें बच्चों के बिस्तर पर देखकर मुझे लगता कि बच्चे बिस्तर गंदा कर देते हैं, कभी कभी गीला भी कर देते हैं, फिर भी माताजी उस पर आनंद से लेट जाती हैं। इस प्रकार कैसे इनके शिविर के दिन पूरे हो गए पता ही नहीं चला।
यह मथुरा से लौट आए।
हमारी छोटी बेटी करुणा का जन्म भी 10वें महीने में इनके लौटने पर ही हुआ और सच में यहीं से मेरे भाग्य का बदलाव भी प्रारंभ हो गया। इन्हें मैंने तेरी अमानत मानकर रखा था।
गुरुदेव साधना हेतु हिमालय जाने वाले थे।
16 से 20 जून 1971 की तिथियों में मथुरा में विदाई समारोह होने वाला था।
टाटानगर के गायत्री परिजन उन दिनों गीत गाते थे, कुछ चंद महीनों का समय बाकी बचा है, गुरुदेव चले जाएंगे, यह शोर मचा है। अखंड ज्योति पत्रिका में अपनों से अपनी बात शीर्षक के अंतर्गत गुरुदेव इसी आशय के लेख भी लिख रहे थे। पूज्य गुरुदेव के अंतिम दर्शन करने की इच्छा हर किसी को झकझोर रही थी।
कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था।
सन 1971 के विदाय समारोह में हम भी सपरिवार आए थे। हम दोनों यज्ञंग एवं यज्ञशाला की जवाबदारी संभाल रहे थे।
इस समारोह में गुरुदेव के प्रवचन यज्ञ के बाद ही होते थे।
तीसरे दिन के प्रवचन में गुरुदेव का बड़ा मार्मिक उद्बोधन था। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में परिजनों को अपना समय, श्रम, साधन लगाकर मिशन को संभालने और बढ़ाने का भावभरा आवाहन किया। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका हृदय विगलित न हुआ हो।
बहुत लोगों ने अपने आभूषण उतारकर दान किए।
मुझे आभूषण पहनना बहुत प्रिय था। 7-8 तोले के आभूषण मैंने उस समय भी पहन रखे थे।
मुझे भी उत्साह आया और हम दोनों ने परामर्शपूर्वक सब आभूषण एक रुमाल में बांधकर गुरुजी व माताजी के चरणों में रखकर प्रणाम कर लिया।
द 20th of June को गुरुजी माताजी अखंड दीपक लेकर शांतिकुंज हरिद्वार आ गए।
सब जानते हैं कि वे मथुरा से कुछ भी साथ नहीं लाए थे।
उसके बाद सन 76 तक मैं अनेकों बार शांतिकुंज आई।
सन 77 के जून माह में गुरु पूर्णिमा पर्व पर शिविर में भाग लेने के लिए मैं बच्चों सहित आई थी।
गुरुदेव ने हम दोनों को दोपहर में मिलने के लिए बुलाया और बोले, अब यहाँ ही रहना। इन्होंने कहा, गुरुजी 6 महीने तो देता ही हूँ, 2 माह और बढ़ा दूंगा। गुरुजी बोले, मुझे 365 दिन चाहिए। हमने कहा, गुरुदेव बच्चे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी है।
बड़ा परिवार है,
छोटा बेटा बीमार रहता है। गुरुदेव बोले, बेटा तू मेरे पास आ जाएगी तो मैं सब देख लूंगा। हम लोग यहीं रुक गए। दी 11th of July को माताजी ने दोपहर में बुलाया और एक छोटी सी पोटली मुझे दी। मैंने खोलकर देखा, 6 साल पहले समर्पित किए मेरे आभूषण थे।
मैंने कहा, माताजी यह तो मैंने दान कर दिए थे, इन्हें मैं नहीं लूंगी। माताजी ने कहा, बेटा मैं जानती थी कि भविष्य में तुझे मेरे पास आना है,
इसलिए मैंने इन्हें तेरी अमानत मानकर रखा था। फिर बोली, तेरी गृहस्थी कच्ची है,
अभी ये तेरे काम की है, इसे रख ले,
बच्चों के समय काम आएंगे। मेरे लाख मना करने पर भी माताजी ने वह आभूषण मुझे थमा दिए।
मैंने उन्हें संभाल कर तो रख लिया पर कभी पहना नहीं। जब बच्चों का विवाह हुआ तब वही माताजी से प्राप्त आशीर्वाद की पोटली मेरे काम आई। मेरे दोनों बेटों और दोनों बेटियों का विवाह मैंने उन्हीं आभूषणों से किया। पर मेरे लिए आज भी यह रहस्य और आश्चर्य ही बना है कि माताजी ने हजारों की भीड़ और हजारों आभूषणों में से भी मेरे आभूषण कैसे पहचाने और कहाँ संभाल कर रखे थे।
जितने आभूषण दिए थे उतने ही थे, न एक कम न ज्यादा। सच में हमारे पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी त्रिकालदर्शी और सर्वज्ञ थे। श्री कपिल जी भाई साहब बताते हैं, मुझे गुरुदेव के साथ क्षेत्रों में जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।
उनके साथ बिताई ढेरों स्मृतियां हैं।
पंडित लीलापत शर्मा जी भी अक्सर साथ में रहते थे। उन्होंने इस पर पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण नामक पुस्तक भी लिखी है।
बहुत से प्रसंग उसमें छप चुके हैं और भी ढेरों प्रसंग हैं।
जारी रखें अन्य संस्मरण।